सूरज निकल रहा है। हवेली के लंबे कॉरिडोर में पीली हल्की सी लैंप की रोशनी फैली थी, जो पत्थर के फर्श पर अजीब सी छाया बना रही थी। शामली अकेली चल रही थी। पैरों की पायल की आवाज़ उस शांत वातावरण में और अधिक गूंज रही थी। हवेली में हर दिन काम की लय एक सी रहती थी, पर आज कुछ अलग खींच रहा था उसे। कॉरिडोर के बीचों बीच वो वही दरवाज़ा था, भारी काला लकड़ी का, ऊपर पीतल का मोटा ताला और हवा में फैलती उस बंद पड़े कमरे की ठंडी सी महक। शामली वहीं रुक गई, उसकी उंगलियां कांपती हुई ताले के ऊपर चलीं। ये कमरा आखिर है किसका? 10 महीने हो गए थे उसे हवेली में। सारे कमरे खुले, सारा स्टाफ बोलता, रम्या भी हंसते हंसते हर बात बता देती, पर इस दरवाजे का नाम आते ही सब चुप। क्यों? उसके अंदर एक बेचैनी उठने लगी। उसने दरवाजे पर कान लगाया। अंदर सन्नाटा था, इतना गहरा कि लगता था जैसे कमरे में सालों से कोई सांस भी ना चली हो। ये बंद क्यों है, वो खुद से बुदबुदाई, लेकिन अचानक उसे लगा जैसे पीछे किसी की आहट हुई हो। वो पलटी, पर वहां सिर्फ खाली कॉरिडोर। कुछ क्षण बाद वो धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ी, पर मन अभी भी उसी ताले से बंधा हुआ था। कमरे तक पहुंचते पहुंचते उसके दिल में हजार सवाल तैर रहे थे। ये कमरा किसका है? क्यों बंद है? इस हवेली में ऐसी कौन सी चीज छुपाई गई है? और क्या विश्वनाथ जी इसके बारे में जानता है? शामली कमरे में पहुंची तो उसकी सांस अटक गई। विश्वनाथ वहीं था, सामने पुराने आईने के पास खड़ा, सफेद कमीज की आस्तीने मोड़ते हुए, कमर पर काले बेल्ट का बकल कसते हुए, और उसके चेहरे पर वही अकड़ी हुई शाही सी ठंडक। होंठ हल्के से भिंचे हुए, जबड़े की नसें उभरी हुई और आंखों में वही अंधेरी पिघलती हुई गहराई। वो ऑफिस जाने को तैयार था। शामली दरवाजे पर रुक गई, पल्लू उसके हाथ में कसकर थमा हुआ। उसने सोचा, कैसे पूछूं? पूछ भी लिया तो ये कुछ नहीं बताएंगे, पर ये कमरा क्यों छुपाया जा रहा है? उसके चेहरे पर साफ कश्मकश छलक रही थी। विश्वनाथ ने शीशे से ही उसे देख लिया। धीरे से उसने मुड़कर सीधा उसकी ओर देखा, ऐसी नज़र जो कपड़ों से आर पार उतरकर सीधा दिल तक पहुंचती है। वो वहीं ठिठक गई, उसकी सांस हल्की सी तेज हो गई, कंधे ऊपर नीचे होते हुए। विश्वनाथ ने बहुत थोड़ी टेढ़ी की, बोला नहीं, बस घूरता रहा। उसकी नज़रों में कुछ था, गुस्सा नहीं, पर एक ऐसा कब्जा जो बोलने की ज़रूरत ही खत्म कर देता है। शामली ने घबराकर नज़रें झुका ली, पर उसकी जुल्फें चेहरे पर लटक आई थीं और हवा में हिल रही थीं। विश्वनाथ की आंखें एक पल को वहीं अटक गईं। उसे खुद नहीं समझ आया वो उसे क्यों इस तरह देख रहा है। शायद इसलिए कि उसके चेहरे पर डर के साथ जिज्ञासा भी थी, और ये बात उसे परेशान भी कर रही थी और अजीब तरह से खींच भी रही थी। वो धीरे धीरे उसके पास आया, जैसे शिकारी शिकार को नहीं उसके डर को नाप रहा हो। किस बारे में सोच रही हो? उसकी आवाज़ भारी और नीची थी। शामली एक पल को पीछे हट गई। कुछ नहीं, झूठ। विश्वनाथ उसके और करीब आया, इतना कि शामली को खुद को थामने के लिए पीछे दीवार का सहारा लेना पड़ा। उसने गर्दन झुका ली, दिल अब जोर से धड़क रहा था। विश्वनाथ ने सिर थोड़ा झुकाकर उसके चेहरे को देखा, लाल पड़े गाल, कांपते होंठ और आंखों में छुपा सवाल। उसकी आवाज़ और नीची हो गई, तुम उस बंद कमरे के पास गई थी सही? शामली का दिल एक पल रुक सा गया, उसने घबराकर आंखें उठाई। मैं तो बस वहां से गुजर रही थी। विश्वनाथ धीरे से हंसा, वो भी एकदम पास खड़े होकर, बिना मुस्कान आंखों तक जाते। तुम किसी चीज से डरती तो हो, पर रुकती नहीं। उसकी सांस शामली के कान को छू रही थी। शामली का बदन कांपने लगा। मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो बमुश्किल बोली। गलत? वो फुसफुसाया। गलत तो तब होता जब तुम वो दरवाज़ा खोल लेती। शामली की पलकों ने हर शब्द के साथ तेजी से झपकना शुरू कर दिया। उसके हाथ अभी भी पल्लू पकड़े हुए कांप रहे थे। विश्वनाथ ने बेहद धीमे कदम आगे बढ़ाए, अब उनके बीच लगभग कोई दूरी ही नहीं थी। शामली, उसकी आवाज़ में एक सेहरन भरी गर्माहट थी, तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं कि उस कमरे में क्या है। पर मैं हवेली की बहू हूं तो जानने का हक तो है, उसके स्वर में हल्की जिद थी। डर के बावजूद विश्वनाथ की आंखें संकरी हो गईं।
उसने एक पल को उसे ऊपर से नीचे तक देखा, ऐसे जैसे वो उसकी धड़कन तक पढ़ सकता हो। उसने अपना हाथ उठाकर धीरे धीरे उसके कंधे के पास दीवार पर रख दिया। शामली उसके बाजू के बीच कैद सी लगने लगी। वो लगभग उसके कान के पास झुककर बोला, हक, सांसें गर्म, भारी, हक तब मिले जब मैं देना चाहूं। शामली की रीढ़ में बिजली सी दौड़ गई, गाल और भी लाल हो गए, उसकी आंखें उठीं और पहली बार उसने सीधे विश्वनाथ की आंखों में देखा। उन आंखों में गुस्सा भी था, काबू भी, और एक अजीब खतरनाक सी चाह भी। विश्वनाथ ने धीरे से कहा, उस कमरे के बारे में एक शब्द भी किसी से मत कहना, ना माँ से, ना किसी स्टाफ से, और सबसे ज्यादा खुद से आगे मत बढ़ना। शामली ने फुसफुसाकर पूछा, क्यों, उसमें है क्या? विश्वनाथ ने उसकी थोड़ी हल्का सा पकड़ी, धीरे, पर इतना कि उसकी सांसें रुक जाएं। जितना जानना चाहिए उतना ही बता देता हूं, वहां वो चीज है जो मेरे काबू में नहीं। कमरा इतना शांत था कि शामली अपना दिल धड़कता सुन सकती थी। और अगर तुम उसके पास गई, उसने उसकी ठोड़ी छोड़कर धीरे से उसके गाल पर आता हुआ अंगूठा घुमाया, तो तुम्हें भी मेरे काबू में रहना पड़ेगा। शामली की आंखें फैल गई, सांस अटक गई, होंठ कांप उठे। मुझे जाने दीजिए, उसकी आवाज बमुश्किल निकली। विश्वनाथ कुछ कदम पीछे हट गया, पर उसकी आंखें अभी भी उसी पर टिकी थी, भारी, तीखी और अजीब तरह से गर्म। जाओ, वो बोला, लेकिन उस कमरे से दूर रहना। शामली जल्दी से निकलने लगी, लेकिन जैसे ही दरवाजे से बाहर जाने लगी, पीछे से विश्वनाथ की धीमी आवाज आई, और शामली, वो रुक गई। तुम्हें देखना बंद नहीं कर पा रहा हूं मैं। शामली ठिठक गई, गाल लाल, दिल धड़कता, और आंखों में डर के साथ कुछ और भी, जो उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। वो बिना कुछ कहे बाहर चली गई, पर उसकी चाल में अभिचक थी, और दिल में धड़कनों से ज्यादा विश्वनाथ की आवाज गूंज रही थी। कमरा शांत था, पर विश्वनाथ अकेला खड़ा बंद दरवाजे की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में वही बेचैनी और उस बंद कमरे की ओर एक अंधेरी जलती हुई नजर।